भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। आप लोग में से कितने लोग वृंदावन गए हैं? बस दैट्स ऑल। वृंदावन धाम आप जानते हैं ना, सृष्टि का मतलब क्या है? सृष्टि क्रिएशन भगवान का। वो सृष्टि जो है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक है स्पिरिचुअल सृष्टि, स्पिरिचुअल क्रिएशन भगवान का, और एक है मटेरियल क्रिएशन। तो मटेरियल क्रिएशन में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सब चलते रहता है, स्पिरिचुअल क्रिएशन में वो सब नहीं होता है, ओनली हैप्पीनेस इज देयर। शरीर भी बूढ़ा बूढ़ा कुछ होता नहीं है, बीमारी नहीं होती है, जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है, आत्मा दिव्य शरीर में बनी रहती है हमेशा, उसी अवस्था में रहती है जैसा हम चाहते हैं उसी अवस्था में रह सकती है वो। और मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज ये चलते रहता है। और मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु है, उसके तरफ से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर पृथ्वी लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, ऐसे ही सारा अरेंजमेंट है बहुत सारा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, हर एक में एक ब्रह्म है, हर एक में एक विष्णु है, हर एक में एक शिव है। तो मैं ये थोड़ा इंट्रोडक्शन क्यों दिया, क्योंकि ये सभी क्रिएशन के अंदर सर्वश्रेष्ठ भूमि वृंदावन की है, सर्वश्रेष्ठ भूमि। उसमें विशेषता क्या है कि जैसे अभी देखो हमारे दुनिया में कहते हैं कि पूरे भौतिक दुनिया में पृथ्वी लोक भगवान को बहुत पसंद है। आइडिया है क्यों? क्योंकि पृथ्वी लोक से आप स्वर्ग भी जा सकते हो, नरक भी जा सकते हो और भगवान के धाम भी जा सकते हो। ये बिल्डिंग से आपको बाहर निकलना है, कितना फ्लोर है आपका ये? 11th फ्लोर से आपको बाहर निकलना, तो कहाँ से जाएंगे आप बाहर बताइए ना, कहाँ से जाएंगे बाहर? ग्राउंड फ्लोर से। अगर इस बिल्डिंग को बेसमेंट होता 1-2 और आप बेसमेंट 2 में होते तो बाहर जाना तो कैसे जाएंगे आप? ग्राउंड फ्लोर से जाएंगे। यहाँ से इंडिया जाना है तो कहाँ से जाएंगे बाहर? ग्राउंड फ्लोर से जाएंगे। यहाँ से ग्राउंड फ्लोर जाके फिर एयरपोर्ट जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर इज कॉमन फ्लोर, तो वैसे ग्राउंड फ्लोर इज पृथ्वी एंड 6 बेसमेंट है उसको, अतल वितल सुतल पातल रसातल ऐसे 6 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं, बीच में पृथ्वी है। तो भगवान को ये बहुत पसंद है, इसलिए भगवान यहीं पर अवतार लेते हैं। फिर पृथ्वी लोक में उनको भारतवर्ष बहुत पसंद है, इसलिए उसमें वो सारे संत लोग जितने भी अवतार हो गए हैं, कहीं भारत के बाहर हुए क्या आपको मालूम है? मुझे बता देना एड्रेस, सबको पता हो तो। कहीं ऐसे भारत के बाहर कोई भगवान के अवतार या कोई संत आए होंगे जन्म लेकर? नहीं है, भारत भूमि में ही सब लोग, संत लोग भी भारत भूमि में और भगवान के अवतार भी भारत भूमि के अंदर। और भारत भूमि के अंदर बहुत 4 धाम हैं, एक ऊपर बद्रीनाथ का है, एक पूरब में जगन्नाथपुरी है, एक दक्षिण में रामेश्वरम श्रीरंगम है और पश्चिम में द्वारका है ना। इसमें क्या विशेषता है कि भगवान आते लीला करते हैं, लेकिन ना एक छोटी सी बात इम्पोर्टेंट उसमें ऐसी है कि ये सभी चीज़ों में भगवान भगवान के रूप में आते हैं। इसका मतलब भगवान का और कोई रूप है क्या? हाँ, भगवान एक समय ऐसा आते हैं कि भगवान समझ कर नहीं आते हैं। वो जैसे डॉक्टर हमारे घर पर आते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट हमारा स्पेशलिस्ट करके आते क्या? वो घर पे तो किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी के पति, ऐसे रूप में आते ना घर पे, हिडन, वो अपना टोपी पहन के नहीं आते कि मैं डॉक्टर हूँ, ये फलाना स्पेशलिस्ट हूँ। जब बाहर जाते हैं तो डॉक्टर बन के जाते हैं, वहाँ डॉक्टर का काम करते हैं, ऑफिस में वहाँ पर आप मिलेंगे तो डिफरेंट मूड में मिलेंगे आपको, घर में डिफरेंट मूड में मिलेंगे। लेकिन हर आदमी ना अपने घर आना चाहता है, कितना भी बाहर बड़ा आदमी होगा, कितना भी बाहर आदमी बड़ा काम करता होगा, फेमस होगा, बहुत मशहूर होगा, बहुत बड़े बड़े काम करता होगा, लेकिन कहीं ना वो जगह ढूंढता है कि जहाँ पर मैं आई एम मिस्टर नोबडी देयर। मैं अभी आते हुए उनको बता रहा था कि अगर कोई सेलिब्रिटी है उसको एक सॉक्स खरीदना है समझो, तो खरीद सकता है क्या वो? क्या विचार है आपका? किसी सिंपल मॉल में जाकर उसको सॉक खरीदना है, कर सकता है क्या वो? क्योंकि इतना उसका ऑरा है, इसका उतना इतना फेम है उसका, कि वो सॉक्स लेना तो भूल जाओ, उसको इतना घेर लेंगे, वो मैं कैमरा आएगा, वो बोलेंगे सर सेल्फी निकालना है, सर ये करना है वो करना है, परेशान कर देंगे उसको। सॉक्स रहेगा बाजू में, वो भूल जाकर किस लिए आया था घर में, यू विल फॉरगेट व्हाई आई हैव कम हियर। उस तरह से जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ भगवान बन के जाते हैं, तो द्वारकाधीश के रूप में प्रणाम करते हैं उसको, जगन्नाथपुर में भोजन कराते हैं उनको, श्रीरंगम में सुलाकर उनको गीत गाते हैं, ऊपर तपस्या करते हैं, सब जगह वंदन पूजन, क्या कहें आपको, वैकुंठ का एटमॉस्फेयर है सब जगह। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है ना, उसको प्रसिद्ध भी ज़्यादा होती है कभी कभी, ही गेट्स लिटिल बोर्ड विद फेम ऑल्सो, एंड ही वॉन्ट्स टू फाइंड अ प्लेस वेयर ही कैन रिलैक्स एंड बी ऑन हिज ओन एंड बाय सॉक्स ऑल्सो, बाय बिस्किट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट्स टू बाय, अदरवाइज ही हैज नो प्राइवेसी। इसलिए ये चार धाम जो मैंने बताए, इसके आगे भी धाम है, अयोध्या है, वाराणसी है, कितने धाम है जहाँ भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं, उज्जैन में जाते हैं भगवान, किधर किधर जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं, सो मेनी प्लेसेस गॉड हैज गॉन, अलग अलग अवतार में सिंहाचलम में गए, किधर किधर वामन अवतार कहाँ लिया है उन्होंने, नरसिंह अवतार कहाँ लिया है, वराह अवतार किधर लिया है, समुद्र के अंदर लिया है, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, लेकिन फिर भी इतने मशहूर भगवान जो है जगह ढूंढते हैं कि जहाँ मैं कोई नहीं रहूँगा, मैं एक सादा सा लड़का रहूँगा, मेरी माँ होगी, माँ के लिए बेटा होऊंगा, मेरे फ्रेंड होंगे उनके लिए मैं फ्रेंड होऊंगा, और मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी और मैं उनके लिए बॉयफ्रेंड होऊंगा, लेकिन किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ। तो वो कौन सा धाम है? वो वृंदावन धाम है। इसमें सबसे पहले भगवान अपना जो है ना, उसको हिंदी में कहते हैं भगवत्ता, यानी भगवान का पोजिशन जो भगवान के पास है वो छोड़ देते पहले, और दूसरा एक काम करते वो, जो लोग भी उनके साथ में वहाँ पर आने वाले हैं लीला करने के लिए, उनका सारा ज्ञान वो छीन लेते हैं। कौन सा ज्ञान? कि मैं भगवान हूँ, ये ज्ञान आपके अंदर होगा ना, इनको देखेंगे मालूम है आपके ये भगवान है, ये आपका जो ज्ञान है वो छीन लेते हैं, ताकि आप उनको मिलेंगे तो आप नहीं जानेंगे कि वो भगवान है, आप खाली देखेंगे कि वो मेरा बेटा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, मेरा गौचारण करने वाला फ्रेंड है, गुल्ली डंडे वाला फ्रेंड है, ऐसा ही सोचेंगे। तो दो चीज़ करते हैं वो, मेक श्योर दैट उनका अनुभूति साक्षात्कार जो है वो छीन लेते हैं, और खुद से भगवत्ता निकाल लेते हैं और सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं उसके बाद में, ये होने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, जूता नहीं पहनते हैं। आपको पता है वैकुंठ में क्या पोजिशन है? अगर आपको भगवान के चरणों की रज चाहिए, डस्ट, वैकुंठ में मिलेगी क्या? यस और नो? नो तो क्यों नो, और यस तो क्यों यस? हाँ, ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, या तो ए बराबर है तो बी बराबर, दोनों में से एक बराबर ऐसा नहीं है, आंसर भी देना पड़ता है व्हाई इट इज सो। तो इनका उत्तर बराबर है, क्योंकि ना वैकुंठ में, द्वारका में, अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, किधर भी, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो वैकुंठ है, जब चलने का दिल होता है ना, तभी देखो मेरे को चलना है यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर कारपेट बिठा के रखा है, ऊपर से उधर मखमल का रहता है एकदम जरी से बना हुआ, तेज वाला, तेजस्वी, ऊपर से रत्नों से बने हुआ चप्पल आएगा, वो आपको पहनना पड़ेगा पहले, पोर रखने के पहले, उसके बाद उस मखमल पे आप चलेंगे, और जहाँ मखमल समाप्त होगा वहाँ पर चैरियट खड़ा होगा, चैरियट से चैरियट में अंदर जाना है आपको, जहाँ उतरने का जगह वहाँ पर वापस मखमल होगा, और जहाँ मखमल समाप्त होगा, समाप्त होता ही नहीं, सब जगह मखमल पहना रहता है, और जूता निकालने के बाद भी मखमल पे चलना है, तो कहाँ पर रज बनेगी वो? देयर इज नो डस्ट। लेकिन वृंदावन में ना मखमल है ना चप्पल है, नंगे पैर घूमते हैं, कोई अलंकार नहीं पहनते हैं, केवल वनमाला पहनते हैं, कोई वैदुरी मणि का मुकुट नहीं पहनते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं और गाय चराते हैं सिंपल एकदम। हम लोग भी आप लोग आजकल गाय चराने का मौका नहीं मिलता है हमको, भगवान स्वयं गाय चराते हैं। सब सुंदर कल्चर है। नंद महाराज थे ना कृष्ण भगवान के पिताजी, बहुत अमीर थे वो। कहते हैं अभी क्या कहें उनकी ऐश्वर्य के बारे में, एक ही बात बताता हूँ। जब कृष्ण का जन्म हुआ था ना तो उन्होंने 7 पर्वत धान्य दान किया था, केवल 7 पर्वत और हर एक पर्वत के टॉप के ऊपर, शिखर के ऊपर रत्न माणिक लगाए थे उन्होंने। जन्म के अवसर पर लुटाया था उन्होंने इतना धन, इतना लुटाया था कि जो ले रहे थे वो भी दानी भाव में आ गए थे। इतना दानी भाव था उनका कि जो ले रहे थे वो भी दूसरों को बांट रहे थे, इतना उनका दान धर्म के उन्होंने किया भगवान के जन्म की खुशी में। तो नंद बाबा के पास क्या कमी है, कितने नौकर है, कितने चाकर है, लाखों गायें हैं, कोई इतना ऐश्वर्य है, और कृष्ण कौन है, राजपुत्र है, भले वो जानते नहीं भगवान है करके, लेकिन राजपुत्र तो है ना। लेकिन राजपुत्र होने पर भी वो खुद को उनको गाय चराने को भेजते हैं, क्योंकि वो हमारा कल्चर है। राजपुत्र हुआ तो क्या हुआ, उसको नंगे पैर जाके गाय चराना ही है। आज भी वृंदावन धाम में ये कल्चर है। अगर वृंदावन धाम का लोकल व्यक्ति, अगर कोई समझो अमेरिका गया, किधर पढ़ने गया, कमाने गया गया, तो जब तक वो ब्रज के भूमि में नंगे पैर से गाय नहीं चराता है तब तक वो ब्रजवासी नहीं कहलाता है। इसलिए जन्म से अगर बचपन में गया होगा तो भी 50 साल के बाद में आके वो गाय चराता है खेतों में, वन में, इधर उधर, क्योंकि उनको पता है कि मैं किधर भी घूम के आऊँगा तो भी मेरा जो टाइटल है ब्रजवासी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका रिटर्न टाइप पर टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रजवासी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कल्चर। तो भगवान को भी उन्होंने गाय चराने को लगाया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमें भी ध्यान रखना है कि हमारा भी एक कल्चर है ना। आप में से कोई लोग गुजराती से, गुजरात से है, कोई लोग आंध्र से है, मैं कल बहुत आंध्र के लोगों को मिला, कोई कर्नाटक से यहाँ पर है, मद्रास और चेन्नई से बहुत लोग यहाँ पर है, तमिलनाडु से बहुत लोग हैं, और केरला से भी, तो क्या बताएं, आधा तो केरला इधर ही है आधा खाली है उधर। लेकिन आप देखेंगे तो हर एक व्यक्ति का एक कल्चर है ना। हर एक व्यक्ति के अलग अलग त्यौहार हैं, अलग अलग सिस्टम है। किसी में दीपक लगाकर वेलकम करते हैं, किसी में चावल अक्षत डाल के वेलकम करते हैं, कितने कितने तरीके हैं। किसी जाते समय कोई दही दे के विदा करता है, कोई कुछ और विदा करता है, कोई तिलक लगा के विदा करता है। इस बहुत सुंदर कल्चर है, और वो सुंदर कल्चर जो है वही हमारे धर्म का प्रगति के लिए व्हीकल है। वो कल्चर के बोट के अंदर ही तुम्हारा धर्म जो है वो चल सकता है आगे। बिना कल्चर का धर्म जो है वो जल्दी डूब जाता है। कल्चर रहेगा तो कल्चर के कप में वो धर्म आगे बढ़ता रहेगा। इट्स कैरिएबल, इट्स अ वेहिकुलर कैरिंग, यू कैरी इट फर्दर ऑन अ व्हीकल ऑफ कल्चर ऑल योर धर्म। एंड कल्चर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज धर्म स्टेज विद इट, अदरवाइज कल्चर इज नो वैल्यू। विदाउट गॉड कल्चर इज नो वैल्यू, बट कल्चर बिकम मीनिंगफुल वेन धर्म एंड गॉड इज इन इट। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ धर्म एंड कल्चर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसलिए हम लोग चाहे गल्फ में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, UAE में हो, और कहीं यूरोप में हो, कहीं भी हो, अपना कल्चर जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी धरोहर है, वही हमारी लेगेसी है। जैसे नंद बाबा कृष्ण को चरा रहे हैं गाय को, ये प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी समय कम है, लेकिन आपको कुछ चटपटी कहानी बनाने का मुझे मूड है तो वो ऐसा है कि जब भगवान छोटे से थे ना, टॉडलर बेबी, थोड़ा चलने लगे, तो उनको ना बछड़ों का जिम्मेदारी दे दिया कि बछड़ों को चराओ आप। तो बछड़ों का कैसा होता है ना, एक लिमिटेड एरिया तक जाना होता है, दूर जा सकते नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा है, गाय भी छोटी है, भटक जाएंगे, इसलिए वो लिमिटेड एरिया में ही गाय चराते हैं। उसका एक रूल है, जैसे कि परीक्षित प्रभु और सखी सुंदरी खिड़की में आएंगे तो खिड़की से कहाँ तक दिखाई पड़ता है उधर ही जाना है, खिड़की के दिखता नहीं उसके पीछे जाना नहीं है। यू हैव टू रिमेन इन दैट विजनरी विजन बॉर्डर। तो फिर गाय चराते रहे, बछड़े को चराते रहे, लेकिन क्या हुआ, एक दो साल बीत गए, भगवान के 5 साल का उम्र हो गया, तो सब लोग उनको चिढ़ाने लगे, बच्चे लोग, अरे कन्हैया, तुम्हारे पिताजी तुम पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए तुमको अभी बच्चे ही दिए हैं। बड़ी गायों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया आपको, क्योंकि यू आर अ स्मॉल चाइल्ड, दे डोंट बिलीव इन योर कैपेसिटी। अभी ठीक है, पहली बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुना, रोज सुनाने लगे तो फिर वो हंसी मजाक बन गया, कृष्णा डिप्रेशन में चले गए। हाँ, बिकॉज डेली इफ यू से यू आर नॉट केपेबल, यू आर नॉट केपेबल, यू आर नॉट केपेबल, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। और उधर क्या हो रहा है, उधर बड़ी गायें जो हैं वो भी संवाद करती हैं। हाँ, वृंदावन धाम का ऐसा ऐश्वर्य है कि पंछी वंछी सब लोग बोलते हैं। तो बड़ी गायें अपने गोपालों से बोल रही हैं कि अरे हमको भी जाना है कृष्ण के साथ, हमारे बच्चे जाते हैं, आके बताते हैं कितना आनंद आया, हमको कब भेजेंगे आप। तो कहते हैं वो छोटा है अभी, लेकिन वो भी जिद करना, जैसे ये लोग चिढ़ा रहे हैं उसको ना, वैसे वो भी जिद करना चालू करते हैं, तो वो भी उनकी जिद भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक दिन बड़े गोपाल एकत्र आके नंद बाबा को मिलते हैं और बोलते हैं कि अभी ना गायों की तरफ से भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि हमको जाना है उनके साथ, तो कुछ करना चाहिए, गायें बहुत परेशान है, हमारे साथ आने के लिए इतना उत्सुक रहती नहीं है वो। जब उनके बच्चे जाते हैं ना तो ऐसे उनके पीछे पीछे जाती हैं, लेकिन हम उनको रोक लेते हैं, फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो फिर एक दिन ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी का दिन था वो, उस दिन ना बहुत हो गया, उस दिन ग्वाल वालों ने इतना चिढ़ाया, इतना चिढ़ाया, ऊपर से और एक बात बोली उन्होंने बीच में, बोलते ना वो जले पर नमक है ना, उसको बोला अरे कन्हैया तू तो काला है, तुम्हें पता है तुम्हारी हिस्ट्री क्या है। बोले क्या हिस्ट्री है, तुम अनाथ बालक है और तुम एक, आपको मालूम है पुराने जमाने में पेड़ में ना बहुत बड़ी जगह होती थी, पता है आपको, सिटिंग प्लेस भी होते करते, बड़े एक ट्रंक वाले पेड़ के अंदर यू कैन गो इनसाइड एंड सिट, और ऋषि मुनि उस पेड़ के अंदर ही तपस्या करते थे, रहते थे भी उधर से, ऐसा बहुत अच्छा, हमारे भाषा में इसको ढोली कहते हैं, ढोली, पेड़ की ढोली, मतलब पेड़ जिंदा है लेकिन अंदर बहुत जगह भी होती है। मतलब तुम पेड़ की ढोली में मिले थे, बहुत रो रहे थे, और नंद बाबा और यशोदा माई जा रहे थे वहां से, तो उनको रोने वाले बच्चे की आवाज आई तो उनको बहुत बुरा लगा, तो कहीं दिखा नहीं वो, तो आवाज की ओर गए तो वो पेड़ की ढोली के अंदर बच्चा रोता हुआ दिखाई पड़ा, काला सा बच्चा, तो उनको दया आ गई, तो उसको उठा के ले गए, वो तुम हो। कैसे तुम हो, देखो वो कितने गोरे गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है और पिताजी भी गोरे गोरे हैं और तू काला है, और दो गोरो गोरे होंगे तो लड़का भी गोरा होना चाहिए ना, देखो बलदाऊ जी भैया कैसे हैं, बलराम जी भैया वो कैसे गोरे गोरे हैं, आप तो काले हो। इसका कारण ये है, अभी इसके पहले थोड़ी कहानी हुई थी उस दिन ना, वो सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे, समझो अभी भी समझो, मैं आया वहाँ से और आप सब लोग ऐसे हंस रहे हो, उसको देख के उसके सब हंस रहे हो, तो मुझे आश्चर्य होगा ना, क्यों हंस रहे भाई, क्या हुआ। तो मैं पूछूंगा माता जी आप लोग क्यों हंस रहे हो, तो जब मैं पूछता हूँ तो आप और हंसने लगते हैं, फिर मैं पूछता हूँ सखी सुंदर माता जी को क्या हुआ सब लोग क्यों हंस रहे हैं, तो वो और हंसने लगती है, फिर मैं पूछता हूँ माता जी वो क्यों हंस रही है, तो आप जोर से और हंसते हो, तो प्रेशर बढ़ेगा ना कि भाई क्या बात है ऐसी, इतने सब लोग हंस क्यों रहे हैं। वैसे ही कृष्ण के साथ में हुआ, वो जब आया गाय को लेके, सब लोग मुंह दबा दबा के पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे, ऐसा झुक झुक के हंस रहे, गले मिल मिल के हंस रहे, आंखों से आंसू भी आ रहे, इतना हंस रहे। तो उसने बहुत देर तक प्रयास किया, तो आपने मैं जब कैसे बताया आपको, उनको पूछा तो वो हंसे, इनके पूछा तो वो हंसे, बहुत देर तक पूछते रहे, तो फिर वो परेशान हो गए, बताओ बताओ क्या हुआ, तो बोलते हैं इट्स टू फनी वी कांट टेल यू, इतना मजेदार बात है कि हम लोग आपको बोल नहीं सकते हैं, तो बाद में बोलते बोलना ही पड़ेगा आपको। और इतना एंग्जाइटी उत्पन्न करने के बाद में, इतना देर रुकवाने के बाद में, इतनी देर हंसाने के बाद में उन्होंने बोला कि तुम ना यशोदा और नंद महाराज के बेटे ही नहीं हो, अभी इट इज़ टू फनी फॉर यू बट टू पेनफुल फॉर मी, है ना। इतना रोए, इतना रोए, पहला पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, नो मेरे बाप माँ बाप है, मेरे माता पिताजी हैं, तो उन्होंने पूरी कहानी बताई पूरी, और कहानी बहुत लॉजिकल कहानी है ना, कि तुम काले हो, माता पिता गोरे हैं, और तुम्हारा बड़ा भाई गोरा है, और तुम ही काले हो, पूरे परिवार में कोई काला है ही नहीं, तुम ही काले हो, तुम्हारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था पूरा, वो समझ गए, और इतना रोए, इतना रोए, इतना बहुत परेशान हो गए। घर पे आए तो एवरीडे क्या होता है, घर पे आते तो वेलकम होता है ना उनका, गोपियाँ खड़ी रहती हैं ऐसे हाथ में दीपक लेकर, परात में दीपक, और मिठाइयाँ, फूल, अक्षत, कुमकुम सब लेके फिर स्वागत होता है, उनकी मिठाइयाँ बांटी जाती है, उनको खिलाया जाती है, गीत गाया जाता है। तो फिर वो दिन कुछ नहीं हुआ, सीधा जाके सो गया वो, परेशान हो गया, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। पहले क्या बताया था उन्हें घर पे उधर ग्वाल वालों ने, इट्स टू फनी वी कैन टेल यू। माँ बाप पूछते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब माता पिता टू सैड, टू सैड स्टोरी, बताओ क्या हुआ। मतलब सब लोग बता रहे हैं कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। तो माता पिता को बहुत मुश्किल हुई समझाने के लिए, तो हमारा ही बेटा है, ऐसा हुआ, तो तू आधी रात में आया था ना इसलिए वो तू काला हो गया, भैया जी तो हमारे तुम्हारे थे वो दोपहर में आए थे इसलिए वो गोरे हो गए, सब बचपन की भाषा में समझाया उसको। लेकिन उसका तो दिमाग में फिट हो गया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ करके। फिर बहुत समझाया उनको बहुत प्रेम से, देखो तू मेरा लाडला बेटा है वगैरह वगैरह। अब इसके ऊपर से वो बोल रहे हैं कि तुम अभी तो इमैच्योर हो, तुमको बछड़े ही दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा जले पर नमक, ऑलरेडी तुम बोल रहे हो कि तुम इमैच्योर हो और तुम कैपेबल नहीं हो, तुम लायक नहीं हो, सक्षम नहीं हो। तो वो दिन बहुत हो गया, वो दिन भी ऐसे ही गया, वेलकम वेलकम कुछ स्वीकार नहीं किया, सीधा जाके सो गया। उस दिन जब यहाँ पर गार्डन मंदिर वन में सब चल रहा था ना, ये उनको चिढ़ाना वगैरह, जो पीक पे पहुंच गया, इधर क्या चर्चा हो रही है कि अभी गायें भी बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और हम लोग फिक्स करेंगे अभी क्या करना है। ब्राह्मण आते हैं, वो कहते हैं कि अभी तुम दे दो बड़ी गाय का, 5 साल की उम्र में गोपाल की पदवी प्राप्त होती है ब्रजवासी बालकों को, तो उसको गोपाल करने का समय है। पहले क्या पदवी थी, एनीबडी नर्स, पहले पदवी क्या थी वो बछड़ों को चराते समय? वत्सपाल, वत्सपाल, वत्स यानी बछड़ा, बछिया और बछड़ा पालने वाला वत्सपाल। अभी गोपाल को गोपाल की पदवी देने का समय आ गया है, ब्राह्मण लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा मुहूर्त ढूंढते, बोले कल ही मुहूर्त है, कल अष्टमी है, कल अच्छा मुहूर्त है, कल उनको गायों का जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। तो फिर वो बड़ा एक लंबी कथा है, वो मैं किसी और समय बताऊँगा आपको, बहुत लंबी कथा है कैसे उनको बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया गया और वो चलाने लगी गाय। इस तरह से इसमें अभी क्या आपको लगा स्पेशलिटी? अरे वो जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं वो भगवान है, लेकिन किसी को पता नहीं है वो भगवान है। 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है वो, वैकुंठाधीश है वो, सब सृष्टि के निर्माण करता है, पत्ता पत्ता उनकी इच्छा से बगैर हिलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति है वो, लेकिन उनको ये सब अच्छा लगता है, इसलिए वो वैकुंठ का साम्राज्य, वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर गोपियों के घर में छाछ चुराने के लिए जन्म लेते हैं। बोलते हैं वैकुंठ में इतना ऐश्वर्य में आनंद नहीं है जितना चुरा चुरा के ग्वालिनियों के घर में जाकर मक्खन दूध दही चुराना आनंदमय है। तो सब तो उनका है ना, उन्होंने निर्माण किया उसको, मक्खन भी उनका है, सब लोग उनके ही है, भूमि भी उनकी, सब कुछ उनका है, लेकिन चोर बन के चुराने में उनके साथ और उनकी गाली खाने में कितना आनंद है मुझे। वो कहते हैं कि अरे वो ब्रह्मा ने बच्चे चुराए थे तो कितना बड़ा प्रार्थना किया, जब मेरा जन्म हो रहा था तो सारे देवता आके देवकी के गर्भ के पास प्रार्थना कर रहे थे। हाँ कितने भागवत पढ़ेंगे ना, अरे बहुत सारे चैप्टर है प्रार्थना के, बड़े बड़े वेदों के उच्चारण किए हुए। वो कहते हैं मुझे उसमें बिल्कुल रस नहीं आता है, लेकिन जब ग्वाली गोपियाँ जब गाली देती ना मक्खन चुराने के बाद में, जो बुरा बुरा बोलती ना, तो मुझे वेदों से भी अच्छा लगता है, वेदों की प्रार्थना से भी अच्छा लगता है मुझे। ये हमारे भगवान हैं, उनको ऐश्वर्य हम दे सकते हैं उनको स्तुति करने के लिए, लेकिन उनको ज़्यादा आनंद जो है ना वो गोपियों की गाली सुनने में आता है, क्योंकि उसमें प्रेम है, वो प्रेम के भूखे हैं। वैकुंठ में भी प्रेम है, लेकिन ऐसा प्रेम जो उनको बोल रहे तू काला है, तू तेरी माँ का बेटा नहीं है, ये सब बातें बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उनको अच्छा लगता है बहुत। फिर वो गोपियाँ रास्ते में बैठी रहती हैं, बोलते अरे कनुआ कितना भारी मटका है, ज़रा उठा के सर पे चढ़ा देना। अरे नेक हेल उठा जा रे ए छोरा नंद जू को, थोड़ा सा उठा के रखना सर पे, बहुत भारी है, अरे नंद के मतलब नंद के बेटा ज़रा उठा लो उसको। तो सब गोपियों को वो हेल मतलब बोझा उठा के सर पे रखते हैं उनके, और बोलेगा कि माखन दोगी ना तो ही उठाऊँगा, हाँ दूंगी ना, तो पहले माखन देते हैं फिर सहेल फिर मटका सर पे रखते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका। और ऐसे भी कहा है कि बहुत सारी कहानियाँ है उसमें, वो जो बच्चे थे ना छोटे से बालक एकदम, तो वो कई देर तक उनको नचवाते थे गोपियाँ ताली बजा बजा कर। और क्या प्रलोभन था उनके लिए कि थोड़ा सा मक्खन देंगे तो नाचेंगे। तो कितना मक्खन देती थी मालूम है आपको? आपने कितने लोगों ने सुना है चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा, ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा ना आपने। तो वो चुल्लू क्या होता है किसी को मालूम है? कभी सोचा है आपने? यू हैव यू गॉन बियॉन्ड द गाली एनी टाइम? चुल्लू का मतलब क्या होता है पता है किसको? नहीं मतलब आप दिखाओ 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 आपका चुल्लू कितना है दिखाओ। वो चुल्लू मतलब ये हाथ का ये जगह है ना गड्ढा हाथ का जो आचमन कहते हैं ना केशवाय नमः, कितना पानी होता है उसके अंदर उसको चुल्लू कहते हैं। उसका और एक नाम है छछिया, छछिया भी एक नाम है। तो छछिया का मतलब क्या है कि जितना छाछ दही जमाने के लिए पर्याप्त होता है उसको कहते हैं छछिया। तो छछिया पर छाछ के लिए अहिर की छोरिया कन्हैया को नचावे ऐसा बताया है, उतना उतना सा देकर उससे नाच करवाते वो। और कहते हैं कि अरे मैं गोपी मैं तो थक गया अभी इतना तो नचाया। बोले अच्छा है तो मक्खन खा करके मोटा हो जाएगा ना और नाच थोड़ा सा, तो थोड़ा नाचेंगे तो थोड़ा ही देंगे। थोड़ा क्यों दे रहे? बोले थोड़ा दे रहे क्योंकि आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे ना तो थोड़ा ही दे रहे। इतना दे दे के नचवा रहा है उसको। ये ब्रजभूमि है, ये वहाँ का भाव है कि भगवान भी किसी को पता नहीं कराते कि भगवान हूँ। और ऐसे ऐसे काम करते हैं कि वैकुंठ वाले देखकर हैरान हो जाते हैं, अरे क्या कर रहे हैं मेरे भगवान को नचा रहे हैं। इतना छप्पन भोग खिलाते हैं हम लोग उनको मंत्र मंत्र बोल के, वो बेचारा एक एक छछिया भर के लिए इतना तड़प रहा है उधर लेकिन उनको कितना आनंद है उसके अंदर, उनको मजा आता है उसके अंदर चुरा चुरा के खाने में, अरेस्ट होने में। हाथ पांव उसको ऐसा मोड़ के अरेस्ट करते हैं, बंदी बनाकर लेके जाते हैं। चलो वो कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। ऐसे उन्होंने बहुत परेशान किया उनको, बोला अभी रोज आकर चोरी करता है, हम लोग कंप्लेन करते हैं। तो मैया बोलते हैं हमारे घर में कमी है क्या, कुछ हमारे घर में कुछ कमी है? मैं तो कमल की खुशबू वाली घास जो है ना वो गायों को खिलाती हूँ। मेरे पास 100 स्पेशल गाय बना के रखे मैंने। हम लोग कैसे ना वो ये नस्ल ये नस्ल करके एकदम परफेक्ट एक गाय बनाई है, 100 गाय बनाई है। पद्मगंधा, क्यों पद्मगंधा? क्योंकि वो कमल वाली खुशबू वाला घास खाती है, फिर उसके दूध को कमल की खुशबू आती है, फिर वो दूध गर्म करते हैं तो सब घर में कमल की खुशबू आती है, फिर जब दही जमाते तो कमल की खुशबू आती है, और जब मक्खन निकालते तो और कॉन्सेंट्रेटेड कमल की खुशबू आती है, और वो मक्खन का घी निकलता है, और वो मैं कन्हैया को खिलाती हूँ मक्खन, और भरपेट है हमारे पास, बहुत बहुत दूध निकलता है, बहुत मक्खन आता है, और उसको मैं यहाँ तक फिल करके भेजती हूँ ताकि वापस आने तक इधर ही रहे वो तो तुम क्या कैसे कह सकती हो कि कितने बजे आया तुम्हारे पास? तो बोलेगे इतने घड़ी में आया था। अरे तो 2 मिनट के पहले मेरे घर से निकला था यहाँ तक भर के, तो मैं कैसे उम्मीद करूँ कि तुम सही कह रही हो? हाउ विल आई बिलीव? तुमने तुम्हारे बच्चे को पूरा ब्रेकफास्ट खिला के पेट भर के भेजा है, और वो यहाँ से तुम्हारे नेबर के घर पे गया और बोला उसने वहाँ से बटाटा वटा कर निकाल के खाया, तो अब हाउ विल यू बिलीव इट? अभी अभी मैंने उसको उल्टी होने तक खाना खिलाया है, और तुम बोल रहे हो तुम्हारे घर में आके पेड़ा खाया उसने। तुम मेरे बच्चे को क्यों लांछन दे रहे हो, क्यों नाम रख रहे हो उसको, ऐसा क्यों गलत बात नाम बोल रहे हो? ये रोज का स्टोरी है, रोज आके कंप्लेंट कर रहे हैं, रोज वही बोल रहे हैं। अरे कम से कम एक बार तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ उसको, कितना कंप्लेंट करोगी? तुम मेरे बालकों के दुश्मन हो क्या, हमेशा आके नंद भवन में कंप्लेन करते रहते हो? कुछ ना कुछ तो प्रूफ लेके आओ ना एक बार। तो सबने ठान लिया कि अभी ये मैया जो है ना रोज डिफीट करती है हमको, एक बार रंगे हाथ पकड़ने का प्लानिंग करना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं वो दिन मक्खन ना बहुत लो टांगते हैं, हमेशा कहाँ टांगते हैं? अंधेरे वाले कमरे में ऊपर जितना हो सके। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और फिर तोड़ते हैं उसको खाते हैं। तो ये दिन लो करते हैं, वो उसके घंटी बांध देते हैं, हर एक मटके को घंटी बांध देते हैं, और घंटी को भी बताते हैं कि देखो जब वो आएगा ना खाने को, जैसे हाथ डालेगा ना तुम जोर से बजना घंटी के लिए, हाँ यस यस आई एम विथ यू, तुम्हारे प्लान में मैं सम्मिलित हूँ। और सब लोग छुप जाते हैं झाड़ी में ताकि आएगा और घंटी बजेगी सब लोग जंप करेंगे उसको झपक के पकड़ेंगे, और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बलराम को कौन पकड़ेगा, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तू बलराम को पकड़ेगी, तो कृष्ण को पकड़ेगी, तो सुदामा को पकड़ेगी, तो अर्जुन को पकड़ेगी, तो वो सुबल को पकड़ेगी, तो विशाल को पकड़ेगी, ऐसा थोड़ा फिक्स जोड़ी फिक्स है, ताकि ऐन मौके भगदड़ मचेगी ना तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं किसको पकड़ूं। ग्वाल बाल बहुत होशियार होते हैं, ग्वाल बाल बहुत जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, उस समय पर आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि वो जो पीला धोती वाला है उसको मुझे पकड़ना है। ठीक है, सब कुछ हो गया, घंटी लग गई, सब लोग चुप गए, थोड़ी देर में कृष्ण भगवान आए, देखा अरे आज तो एकदम माहौल एकदम बेनिफिशियल है, पूरा अनुकूल वातावरण है, कोई चढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, हाथ के लेवल पे है, लेकिन देखते अरे घंटी लगी हुई है, मतलब गड़बड़ है कुछ, रोज तो घंटी लगती नहीं है, घंटे का क्या काम, आप सोचो भटके पर घंटे में क्या काम है, चलो भाई दही का काम है कि जमाना है, चलो जमा के छोड़ दिया ऊपर, जम रहा है अपने आप। लेकिन जो मक्खन वाला पात्र है उसके ऊपर घंटे का क्या काम है, तो फिर घंटी से बात करते, अरे तू क्यों वहां टंग रही है, नहीं मुझे बताया है कि मुझे बजना है, अरे तो कैसे बचेगी, नहीं तो आपने तो मर्यादा बनाई है, जब को आप कुछ खाते हो, कुछ भोग लगाते हैं आपको, तो हमारे हमारे लिए बजने का आदेश है। है ना कि नहीं है, हाँ आपने तो मर्यादा बनाई है तो हमको तो बजना ही पड़ेगा, लेकिन देख घंटी मैंने तो मर्यादा बनाई है, लेकिन आज मैं ही तुमको आदेश दे रहा हूँ, आपको बजना नहीं है आज। तो ठीक है मालिक, आप तो मालिक हो, कोई बात नहीं, नहीं बजेंगे। और फिर सब लोग खाना शुरू कर देते हैं और कृष्ण सबको देख रहे हैं, कोई घंटी तो नहीं बज रही है, और सबको लगी हुई घंटी लेकिन कोई घंटी नहीं बज रही है, सब खाने लगते हैं, सब कंफर्म करते हैं घंटी नहीं बज रही है, और फिर अपना मटके में हाथ डालते हैं तब भी नहीं बज रही है, निकालते हैं तब भी नहीं बज रही है, लेकिन जब मुंह में डालते हैं तो टंगड़ंग बजना शुरू रहता है, और वो अभी तू क्यों बज रही है ये पूछने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो घंटी बजते ही जो जंप मारते सब लोग आके ना, तो बीच में अरे तुमको बताया था तुमने क्यों बजा, बचाने के टाइम किधर है, वो तो बज रही है, और वो निकल फिर पकड़ लेते हैं उनको, है ना, कुछ लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन ये दोनों को तो पकड़ना है, क्योंकि इसके बारे में शिकायत करना है हर बार हर टाइम, तो मम्मी जाके क्या बोलती है, तुम लोग खाली शिकायत करते रहते हो, आज रंगे हाथ पकड़ा है, तो पहले क्या करते ना सब पूरा ट्विस्ट करते उसका हाथ दोनों ऐसा पीछे मोड़ के पीछे पकड़ लेते ऐसा कड़क, चलो अभी तुमको ले जाएंगे, जाना आरंभ करते हैं, तो अभी रोड से जा रहे, रोड से मेन रोड से जा रहे हैं, अभी सोचो आप कितना एम्बेरसमेंट है, हाँ रोज जो ऐसे ऐसे करता है ना गोपियों को, वो आज बंधा हुआ है, उसमें दो टाइप के लोग हैं, एक वो गोपियां हैं जो उनकी माता की गालियां खा खा कर थक गई है कि भाई तुम लोग ऐसे ही हो, हमारे बालक को हमेशा ताने मारते रहती हो, मेरा बालक इतना अच्छा है कभी चोरी नहीं करता है, तुम लोग हमेशा चोर बोलते हो, मेरा बदनामी करते हो, तो वो लोग परेशान हैं, और कुछ गोपियां हैं जो खुश है कि मेरे घर में आके खाता है, और दो प्रकार के बच्चे हैं साथ में आने वाले, एक बच्चे वो जो जरा से मोटे हैं शरीर से, ज़्यादा तेज भाग नहीं सकते हैं, वो उनको पकड़ते हैं और जो भाग गए हैं उनका भी मार इनको देते हैं, समझ में आया ना, मारना सबको होता है, लेकिन अगर आठ भागे और आठ रह गए तो 16 लोगों का मार 8 लोगों को पड़ता है। तो वो लोग हैं उसमें जो परेशान हैं, और वो जो भागते हैं वो भी उसमें हैं जो खुश रहते हैं हमेशा, मक्खन खा के भाग जाते हैं। तो अभी रोड पे क्या सीन है, रोड पे सब लोग खड़े हैं, दो टाइप के फ्रेंड्स, दो टाइप के गोपियां, तो कुछ गोपियां रो रही है, अरे बेचारे को पकड़ के जा रहे हैं, बेचारे देखो पकड़ के जा रहे हैं, कुछ ग्वाल बाल भी रो रहे हैं, अरे हमारा कन्हैया, हमारा नेता, हमारा जो लीडर है वो हमारी मक्खन की व्यवस्था करता है रोज, वो बेचारा पकड़ा गया तो रो रहे हैं, और बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो तालियां पीट रहे हैं, अच्छा हो गया अच्छा हो गया, तुम्हारे वजह से रोज हम लोग पीट ले जाते हैं, खाता तो खाने तो बहुत कम मिलता है लेकिन पीटना ज़्यादा मिलता है, और तुम ज़्यादा खा के भाग जाते हो, अच्छा हो गया आज तुमको दंड मिलना पड़ेगा। तो और वो गोपियां भी वैसे ही बोल रही है, रोज रोज गाली सुनते हैं, आज तुमको मैं पिटवा के रहूंगी मैया से, तो इसको बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखो ना, अभी पब्लिक में ले जा रहे हो, तो बांध के ले जा रहे हो, अरेस्ट करके ले जा रहे हो, लेफ्ट राइट खुशी में ले जा रहे हो, कम से कम जरा ढक तो दो मुझे, सबको देखने को दिल नहीं हो रहा है, मतलब मैं आंखें नहीं मिला सकता, अभी सब मुझे देख के हंस रहे हैं, कुछ तालियां बजा रहे हैं, तो ठीक कोई बात नहीं, उसको अपनी चुनरी से ढक देते हैं, और फिर भी लेफ्ट राइट चल रहे हैं। तो जब चुनरी से ढकने का समय आता ना, तो उसी का जो गोपी का बेटा है वो भी कृष्ण का फ्रेंड है, सब फ्रेंड है कृष्ण के, सब लोग तो क्या है ना, चोरी मंडली में सब लोग रजिस्टर्ड है सब लोग। तो उसको इशारा कर देता है, अपने बाजू में चलने को बोलता है, थोड़ी देर चलता है तो बाकी लोग तालियां पीटने की आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है, लेकिन अभी तो मुंह नहीं दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो मैया को बोल रहा है, वो गोपी को बोल रहा है, गोपी देखो मेरा सा, देखो कितना छोटा सा हाथ है मेरा, इतना कोमल कोमल सा हाथ है, तेरे कितनी बड़ी बड़ी उंगलियां देख, वो तो इतनी बड़ी उंगली से इतना बड़ा पंजे से मेरा हाथ कस के पकड़ा है, देखो यहाँ पकड़ा है ना, क्या होता है मालूम है आपको, यहाँ पकड़ने से, टाइट पकड़ने से क्या होता है, देखो कितना लाल हो गया मेरा हाथ, देखो उंगलियां बड़ी बड़ी हो रही है, अभी सूज रही है खून से, थोड़ा सा नेक थोड़ा ढीला पकड़ना, अभी कितना जा तो रहा हूँ तुम्हारे साथ में, मैं ले जा मैया के पास मेरे, लेकिन तो थोड़ा हाथ तो बदले कर सकते ना। तो उसको लगा बदले करने में क्या है, तो पकड़ा पकड़ के तो रखा है उसको, तो थोड़ा ठीक है। तो जैसे ही वो हाथ बदलते ना, तो वो उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में देते हैं। अभी कैसे करता है मुझे मत पूछो, मुझे नहीं मालूम कैसे किया उन्होंने, लेकिन पलक झपकने के पहले चुनरी के अंदर वो गोपी का बेटा और ये ऐसे नीचे से क्रॉल करते करते पीछे होके भाग जाते हैं पूरे, और गोपी अपना लेफ्ट राइट करके चल रही है, और वो भी चुनरी के नीचे है। उसको बोला चुपचाप बोलना, कुछ बता, बात नहीं करना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जैसे ही आपका दर्शन होगा कोई दंड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं आपका आप नहीं हूँ, आप दूसरे हो बेटे। पीछे घर जाते हैं, मैया भूख लग रही है बहुत, आज बहुत भाग भाग के आया हूँ, बहुत थका हूँ, कभी कहा तुम्हारा माखन गले में था, कब तक गया वो निकल के, जल्दी खिला दो, जल्दी खिला देती है, लोड़ी गाती है, बोले नींद आ रही है बहुत, तो सो जाता है। उसके बाद में ये लेफ्ट राइट मंडली, हाँ, और बहुत लोगों को इंटरेस्ट है इसके अंदर क्या होने वाला है, ऐसे बहुत लोग साथ में भी चल रहे हैं क्योंकि हमेशा जाते हैं हम लोग, गाली सुन के लौट के आते हैं, आज तो रंगे हाथ पकड़ा है, तो आज तो कुछ अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा, तो पब्लिक जा रहा है साथ में, तो बहुत बड़ा शोर मच रहा है ना, इतना बड़ा हल्ला मच रहा है। तो भैया आते हैं, यशोदा दीदी सुनो आ जाओ बाहर आ जाओ, तो आते क्या वो भाई, बोले तुमने कहा था ना तुम्हारा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ के लाया है। अच्छा, उसको पता है ना, वो सोया है घर पे, तो सब कुछ बड़ा बड़ा बात बताते, ऐसा किया वैसा किया, घंटी बांधी ऐसा किया, फिर पकड़ा उसको, फिर वो बोला हाथ बदले करो, फिर उसने बोला चुनरी डालो, वो सब कुछ किया, लेकिन लेके आया उसको आज, आज हम आपको साबित करके ही रहेंगे कि तुम्हारी बात क्या है, सच क्या है, थोड़ा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं दिखाओ। उतने तक पीछे से कृष्ण आता है, बोले मैया क्या शोर मच रहा है, कौन इतना हल्ला मचा रहे हैं। तो ऐसे देखती है उसको, देखते रहो बोलती, देखते रहो। फिर वो जब चुनरी उड़ाते ना, तो उसी का बेटा उसके हाथ में। तो मैया कहते बड़ी होशियार हो तुम, अपने बेटे को चोरी करते हो पकड़ती हो, और मेरा बेटा करके प्रस्तुत करती हो। तो बीच में कृष्ण ने कई बार कहा था उसको जाते समय कि देख गोपी मुझे तू छोड़ दे, तू पछताएगी, तू निश्चित पछताएगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दे मुझे, थोड़ा सा माखन खा ले तो क्या हुआ, इतनी बड़ी बात क्या, इतने सारे गाय इतने सारे मक्खन होते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको तो वो बात लगी है ना मैया की, कि तुम लोग मेरे बच्चे को चोर बनाते हो और प्रूफ लाते नहीं हो, तो वो अड़ी है अपने बात पर। जैसे ही लड़का सामने था ना, उसको एक लाफा लगा देती है, तू कहाँ से आ गया मैं तो उसको पकड़ा था। तो वो कुछ नहीं बोल रहा है बेचारा, वो एकदम इतना एम्बरेसमेंट, इतनी पब्लिक खड़ी है पीछे, सामने मैया खड़ी है, और अभी एकदम क्लाइमैक्स के सीन पे आपका इतना एम्बरेसमेंट हो गया। तो वो तुरंत भाग जाते हैं वहां से, जब भागते ही अपने घर जाने के लिए, वहां से कृष्ण दौड़ के आते हैं, बोले बताया था ना मैंने, बताया था ना कि पछताएगी तू अगली बार ना, अभी तो बेटा प्रस्तुत किया है, अगली बार हस्बैंड होगा तुम्हारे हाथ में, फिर समझना मैं क्या हूं, ऐसा है। तो 11 बज गए हैं, ऐसा भगवान जो है चटपटा आनंद ब्रजवासियों को देते हैं। कितने भाग्यवान होंगे लोग वो, हाँ, जो परम भगवान पर ब्रह्म षड ऐश्वर्य पूर्ण 64 कलाओं से पूर्ण सभी सृष्टि के निर्माता परात्पर भगवान परमात्मा गोलोकेश्वर वैकुंठनाथ भगवान एक बालक बन के ब्रज में आते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। तो बहुत भाग्यवान भूमि है वो ब्रजभूमि, वहाँ पर भगवान नंगे पैर घूमते हैं, मुरली बजाते हैं, भले कहीं बार ब्रज के बाहर उन्होंने मुरली नहीं बजाई है, कहीं ब्रज के बाहर नंगे पैर नहीं चले हैं, कहीं ब्रज के बाहर उन्होंने वनमाला नहीं पहनी है, मोर मुकुट नहीं पहना है, वो सब सीरियल में दिखाते हैं। तो महाभारत में भी सब सभा में कुरुसभा में भी मुरली लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने ब्रज के बाहर कहीं भी मुरली धारण नहीं किया है, कहीं मोर मुकुट धारण नहीं किया है। और ब्रजवासी भक्त क्या बोलते हैं, हमको क्या करना है द्वारका से, क्या लेन देन हमको, जहाँ मुरली नहीं है, जहाँ मोर मुकुट नहीं है, वहाँ पर हमको कुछ काम नहीं है। बिन मुरली बन माल चंद्रिका बिनते काऊ काम, क्या हमको काम है उससे, उसके बिना हमको क्या काम है, अगर मुरली नहीं है और मोर मुकुट नहीं है, उसके बिना हमको किस में इंटरेस्ट नहीं है, वो कृष्ण होगा तो क्या हुआ, हमको उस कृष्ण में इंटरेस्ट नहीं है जो मुरली और वनमाला के बिना है, जो मुरली और मोर मुकुट के बिना है, ऐसा प्रेम वहाँ पर उपलब्ध है। तो आप लोग आइए वृंदावन धाम, दर्शन कीजिए भगवान के स्थानों का, जहाँ लीला किया है बहुत सुंदर सुंदर। हरे कृष्णा।